Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ke chhathve adhyay ka tisra mantra hai. दो हो गया है। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूया तत्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यं त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैः च सूक्ष्मैः तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूय तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मै। जो प्रथम अध्याय में बात बताई थी उसी का उपसंहार कर रहे हैं, क्योंकि उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता देखी जाती है। तो उपक्रम में बताया था प्रथम अध्याय में सृष्टि के विषय में, तीसरे श्लोक दूसरे श्लोक से कहा था ना, देखो पिछले प्रथम अध्याय में आपको याद होगा कहा है, हाँ सब बताया था आपको, उत्पत्ति बताया था, काला स्वभाव नियतिर्यदीक्षा भूतान योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग ऐसा नत्वात्मभावात् आत्मप्यनिशा सुख दुख है। तो 19 बातों को उठाकर उपसंहार यहां कर रहे, जो पीछे कहा था ना वही उपसंहार है, आपके 70-71 पृष्ठ में था ये, हाँ वहां से प्रारंभ हुआ। दूसरा श्लोक, तत्कर्म कृत्वा उन कर्मों को करके विनिवर्त भूय वांस निवृत्त होता है, तत्वस तत्वेन समेत योगम, तत्वेन का अर्थ हुआ आत्म तत्व के द्वारा, और प्रथम जो तत्व है ना षष्ठी, उसका अर्थ करना कि जो पृथ्वी आदि जो तत्व है उनका धीरे धीरे उपसंहार कर लेता, मतलब कि तत्वेन कार्तुवा आत्म तत्व ज्ञान के द्वारा ये जो अनात्म विषय है पृथ्वी आदि से लेकर अव्याकृत तक उन सब का उपसंहार कर लेता है। कैसे करना है तो नीचे लिखा, एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरष्ट भिरवा, एकेन कार्त्य विद्या, द्वाभ्याम काट करते धर्माधर्म पुण्य पाप या राग द्वेष, त्रिभिर कार्तवा तीन गुण सत्व रजस तमस, अष्टभिर कार पहले किया था पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, कालेन चैवात गुणेच सूक्ष्मै, और काल से आत्मगुण कार्तवा के जो अपने अंतःकरण के दो गुण है ना, काम क्रोध मलो श्रद्धा श्रद्धा हृदय भी तेत सर्वमन एव, तो मन के जो गुण धर्म है उनके द्वारा सूक्ष्म है इन सब से उनका उपसंहार कर ले धीरे धीरे। उपसंहार की प्रक्रिया बता रहे, विलय, उपसंहार बोलते विलय को, विलय को जैसे ये सब नई बात नहीं, व्यवहारिक की बात है। जिस प्रकार पहले एक ब्रह्मचारी होता बालक, धीरे धीरे पढ़ लिख करके होशियार साक्षर हो गया, अब संसार का विस्तार किया, एकेन एक पत्नी को लाया, अविद्या ही मान लो आप लोग अपने ऊपर नहीं लगाना। तो एक पत्नी आ गई अविद्या, अब इसके बाद सुख दुख शुरू हो गए दो, पितरी भी तीन गुण हो गए सत्रजस्तम। अब इसके बाद आगे आठ आठ संतति, मकान दुकान सब विस्तार हो गया। और बुढ़ापे आते आते क्या होता है, सबका उपसंहार, अकेले खाट पर पड़ जाता, बोलता कहीं कुछ नहीं सब ऐसा ही है। बिस्तर पड़ने के बाद अनुभव होता, पहले नहीं, पहले तो आप जैसे विवेकी लोगों को होता है, एक मेवा द्वितीय आत्मा ही है, तो वही उपसंहार प्रक्रिया कर रहे। पहले विस्तार किया पूरा प्रपंच का, फिर विलय उपसंहार कर रहे। भाष्य में भी वही बात लिखा है, बिल्कुल सहज है। तत्कर्म पृथ्व्यादि सिष्ट्वा विनिवर्त्य, पृथ्व्यादि कर्मों का सृजन करके तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय से इच्छण किया, इच्छण करते हुए संसार का विस्तार किया, प्रत्यवेक्षण कृत्वा भूय पुनः तस्याम तस्या आत्मन तत्वेन भूम्याद योगम समेत संगम्य है। प्रत्यवेक्षण इच्छण बोलते हैं देखने को, और प्रति लगा दिया ना, तो प्रत्येक में सबको देख लिया एक एक करके। इच्छण शब्द का अर्थ है निरीक्षण करना एक का, और प्रति लगा दिया तो प्रत्येक पदार्थों का निरीक्षण करके, उसको बोलते हैं प्रत्यवेक्षण कृत्वा करके। पुनः तस्य आत्मनः तत्वेन भूम्यादिना, उस अपने ही आत्मा का, जिस आत्मा का विस्तार है प्रपंच रूप से, उस आत्मा का तत्तीन मतलब भूम्यादि के साथ में योगम कृत्वा, मतलब योग मतलब की संबंध करके, मतलब पहले आप एक मेवा द्वितीय थे, इसके बाद अपना विस्तार धीरे धीरे भूम्यादि तक कर लिया, पूरे संसार तक अपना फैलाव विस्तार कर लिया, और सबके साथ अपना संबंध, योग बोलते संबंध को, सबके साथ संबंध स्थापित कर लिया, किसी के साथ मैत्री का संबंध, किसी के साथ करुणा का, किसी का वात्सल्य का, स्नेह का, आदर का, पूज्य का, अपना पराया, और शत्रु के साथ भी संबंध है, शत्रु के साथ भी एक संबंध, ये मेरा शत्रु होता है ना, आत्मा का संबंध, योग मतलब संबंध, शत्रु के साथ भी ये मेरा शत्रु है, ये अपना मित्र है। तो धीरे धीरे सब विस्तार कर लिया, छोटे बच्चे का विस्तार नहीं होता, बड़ा होता है ना, लोग सिखा दे देखो तुम जानते नहीं, ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारा दुश्मन, हाँ आत्मा का जीवात्मा है, आप सबका विस्तार संबंध जोड़ लेते, वही लिखा यहाँ पर देखिए, तस्य आत्मना तत्वेन भूम्यादिना योगम समेत, लिखा ना, आत्मा का तत्व से मतलब स्वरूप से भूम्यादि के साथ संबंध स्थापित करके, समेत कार्त्या संगम्य णी लोपो द्रष्टव्य, यहाँ व्याकरण की बात है, समेत में णी का लोप हो गया है छांदस। कतिविधि प्रकार, कितने प्रकार से, तो कहते एकेन पृथिव्या द्वाभ्याम त्रिवि, एक मतलब विद्या पृथिव्यादि द्वाभ्याम त्रिव्यष्ट भीरवा प्रकृति भूते, यहां व्याख्यान नहीं किया क्योंकि पहले कर चुके हैं, प्रथम अध्याय में इनका व्याख्यान हो चुका है, इसलिए यहां नहीं कर रहे। एकेन का विद्या लिया है ना, द्वाभ्याम का राग द्वेष धर्माधर्म, त्रिवि मतलब तीन गुण, अष्टवी मतलब की जो आठ ये प्रकृति है, इस बात को उद्धरण देके बता रहे गीता का, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिव च अहंकार में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये आठ प्रकृति भगवान की है। हाँ वो बता दिया, नी लोग छांदस है, ये व्याकरण का है, आपके काम की चीज नहीं, ये नीच पढ़ते हुआ था, नीच नीच का रिम नी बच जाता है प्रेरणा अर्थ में, तो प्रेरणा और तृणी स्पर्धे होता है। तृणी यहाँ पर लोभ समझ लेना नहीं, ये समित्य में कह रहे, सामित्य बन जाता। तृणीज करेंगे ना तब आगे वृद्धि हो जाएगा, सामित्य बन जाएगा। तृणीज का लोप हो गया, प्रेरणा अर्थ में नीच होता है। ऋण प्रति जो है ना, प्रेरणा अर्थ में होता है। जैसे मान लीजिए, हाँ साम्य, जैसे मान लीजिए व्यवहार में पठती का अर्थ हुआ पढ़ता है, ऐसी में ऋणीच कर देंगे ना तो पाठयती बन जाएगा, पढ़ाता है, वही धातु। गच्छति मतलब जाता है, और गमयति मतलब कि ले जाया जाता है। हर शब्द में ऋणीच कर देंगे तो दूसरा प्रेरणार्थ हो जाएगा। जैसे कि ना सुनोती सुनता है, अणिज करेंगे तो श्रावेती बन जाता है, सुनाता है, सुनता है, सुनोती। अणिज कर दिया तो ये धातु है, श्रावेती बन जाएगा, सुनाता है। हाँ इस तरह से, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेरणा दे रहा हूं तो सामित्य बन जाता। कतेणी लोप छांदस यहाँ पर समझना, ये व्याकरण का चीज है, आपसे कोई ज्यादा संबंध नहीं है। व्याकरण के जब विद्वान बनेंगे ना, लघु कौमुदी पढ़ेंगे आदि आदि, उसमें काम आएगा। आपको तो फल खाना है ना, पत्ता थोड़ा गिरना है भाई। आपको वृक्ष लगाने का जरूरत नहीं, न आपको रक्षण पालन करना, न जल सिंचन, पका पकाए केवल फल आपको मिल रहा है। ये विद्वानों के लिए समझने के लिए कह दिया, केड़ी लोभ समझ लेना। विद्वान, हमारी भाषा विद्वान का अर्थ अलग है, आप लोगों की भाषा में अलग है। हम विद्वान उसको हम लोग मानते हैं जिसने कम से कम परंपरा से पूरा वेद वेदांग वेदांत दर्शन पढ़ के पढ़ा चुका हो, वो विद्वान है हमारे दृष्टि में। पढ़कर पढ़ा लिया है उसको हम विद्वान बोलते। व्याकरण न्याय मीमांसा, व्याकरण न्याय मीमांसा पहले पढ़ेगा, इसके बाद वेद वेदांग दर्शन शास्त्र पढ़ चुका हो और पढ़ा लिया हो, इसको पद पदार्थ का बोध हो, उसको हम लोग कहते हैं विद्वान। पर आप विद्वान उसको कहते हैं जो बढ़िया से बढ़िया कथा कर ले, बढ़िया से बढ़िया प्रवचन कर ले, उसको विद्वान कहते हैं। अंतर नहीं, अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। महामंडलेश्वर एक पद है, उसके कोई वैदों से मतलब नहीं था, मतलब नहीं। जैसे एक उसको उपाधि कहते हैं पद, इस सामाजिक पद है, ये शास्त्रीय पद भी नहीं है, न जो है कोई सरकारी पद है, सरकार में कोई इसका महत्व नहीं है। ये महंत मंडलेश्वर कोठारी पुजारी, ये शब्द जो है ना सामाजिक पद है, सामाजिक उपाधि है, पहले नहीं था। ये सुनने में आता है कि 150 वर्ष से चला है। जैनपुरी जैनपुरी जी महाराज थे, वहां से चला है। ये होता क्या था कुंभ में, कि कुंभ में जो शंकराचार्य लोग है ना, ये शंकराचार्य लोग जो अखाड़ों के महंत होते थे, वो जो है ना पालकी पर उन्हें उठाते, अंदर शंकराचार्य बैठते। तो उनके मन हुआ कि हम लोग पढ़े लिखे विद्वान, ये अंगूठा छाप शंकराचार्य हम कंधे पर धोए, ये तो अच्छी बात नहीं है। उस समय सभी ने अपना दल बल बना लिया कि भाई ऐसा नहीं, ये शंकराचार्य तो हम लोग नया पद एक खड़ा करते, महामंडलेश्वर पद। तो उसके बाद शंकराचार्य लोग कुंभ में आते थे ना, उसका इन्होंने बहिष्कार किया, बोला हम क्यों इनको कंधे पर धोए, हम खुद विद्वान है, सच्चरित्र है, तपस्वी है, ज्ञानी है। तो 150 वर्ष पहले एक महंत शिव पर मंडलेश्वर पर का सृजन हुआ, इसीलिए हुआ। अब जो है जब महामंडलेश्वर पद हो गया, तो पहले तो बड़े बड़े दिग्गज विद्वान होते थे, हर चीज का मतलब होता ही है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन। तो अब जो है ये उपाधि बन गई, पहले नियम था जो विद्वान हो उसी को बनाते थे महामंडलेश्वर, अब विद्वान मतलब नहीं। बस अकाले की बोली लग दी है, 10-20 कम से कम अब 10 लाख हो गया, पहले 6 लाख था, 10 भी ज्यादा हो गया। तो 10-12 लाख खर्च करो, बड़ा भारी भंडारा करो, अखाड़े में 3 लाख जमा करो और हर 3 साल में भंडारा देना पड़ेगा आपको। जहां जहां कुंभ लगेगा, 12 वर्ष में लगता है 3-4 जगह कुंभ, प्रयागराज और हरिद्वार उज्जैन 3 मुख्य है, नासिक का गौण है, वहां गौण है। तो जो बनते हैं उनको हर 3 साल में देना ही पड़ता है, आप बंध गए ना उससे रस्सी से। अखाड़े को 3 लाख देना पड़ेगा, बढ़ता रहता है, और इसके बाद भंडारा प्लस में, तब वो आपको एक पद देगा महामंडलेश्वर, अखाड़े देगा। अब महामंडलेश्वर का फायदा क्या है, इतना ही है कि पंगत में एक थोड़ा सा बड़ा तख्ता लग जाएगा, आसन लग जाएगा, और फायदा है आपको कुंभ में एक रथ मिलेगा नहाने के लिए, बस इतना ही है। हाँ कर देंगे, कर देते हैं, 2-4 लोगों कर दिया इन लोगों ने, अभी किया इस साल, करना ही करना। अब पैसे का वो अपना उपयोग करते हैं, संस्था के सेवा में करते हैं, अपने ढंग से करते हैं, परंतु ये जो पद है ना सामाजिक है, मतलब अखाड़े से प्रदत्त है, दूसरा कोई नहीं लगा सकता, लिखेगा तो आ जाएंगे, वो फेंक देंगे तोड़ता, ऐसा हरिद्वार में हुआ। हरिद्वार में 2-4 लोगों ने अपना महामंडलेश्वर पर लिख के टांगा, अखाड़े वाले तोड़ता के फेंक दिए, वो नहीं, वो अलग, शंकराचार्य पद अलग है, नहीं शंका अखाड़ा 8 है, 8 अखाड़ा देता है। हाँ वो ये 10 नाम ही अलग हुआ। देखो ये जो अखाड़ा है ना, अखाड़ा तो हो गया आपका 7-8 अखाड़े हो गए, अखाड़ा महामंडलेश्वर पद देता है, परंतु शंकराचार्य अलग है, 10 नाम मतलब 10 नाम, जैसे है ना शर्मा वर्मा गुप्ता सब होता है ना, ऐसे भगवान शंकराचार्य के बाद 10 नाम चला, मतलब महात्मा, इसको आप क्या वो हिंदी में बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, एक और शब्द है सरनेम, सरनेम किसी का गिरी पूरी भारती सरस्वती वन पर्वत अरण्य आश्रम, ये सब 10 नाम है। इसे तो सबको कंठ है, क्या बोलने के, एक सांस से बोल दिया आपको, गिरी पूरी सरस्वती भारती तीर्थ वन पर्वत अरण्य आश्रम, ये 10 नाम कहलाते लगता है पीछे। तो ये जो है चला, अब जो है एक लगभग 2004 से एक और चल पड़ा परंपरा, अब महामंडलेश्वरों में जब कुछ कुरुतियां आ गई ना, तो उसको देखते हुए विद्वानों ने, खासकर हमारे कैलाश के महाराज जिसके सर्वाधार कर्णधार थे, अध्यक्ष थे कैलाश वाले महाराज और साधना सदन के त्याग मूर्ति जी महाराज, इन दोनों ने मिलकर विद्वानों को एकत्रित करके एक नई परंपरा परमादश आचार्य महामंडलेश्वर चला, महामंडलेश्वर के ऊपर परमादर्श आचार्य, 2 शब्द जुड़ गया, और परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर परंपरा चली। तो ये अखाड़े से अलग हो गए, इनका दलबल अलग हो गया, चालू है, इसमें 18-20 महामंडलेश्वर हैं। तो ये सब सामाजिक है, इसका कोई अध्यात्म से या कानून से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक पद है। अच्छा बोरा तो जिसको पूछेंगे सो अपने आप को अच्छा ही बोलेगा, कोई अपने को बोरा कहना नहीं, हमारे हिसाब से अखाड़े तो अखाड़े हैं, इसमें अच्छा बोरा का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ अखाड़े का पहले बड़ा उपयोग था, आज से पहले 47 के पहले अखाड़े ने बहुत अच्छा काम किया, 47 के पहले इतिहास देखे ना, अखाड़े बहुत संग्राम किया धर्म रक्षा के लिए, इतिहास में है उन्होंने मुगलों से औरंगजेब से कई जगह खूब जंग करते थे, अखाड़े में बाल ब्रह्मचारी नागा साधु होते थे, जहां जहां धर्म पर आतंक होता था ना, अस्त्रों से शस्त्रों से धर्म की रक्षा करते थे, इन्होंने कई बार जंग किया है इतिहास से। तो अखाड़े का गठन हुआ धर्म रक्षा के लिए, विद्वान लोग तो प्रवचन के द्वारा जनता को शिक्षित करते सरकार डालते, पर अखाड़े का गठन हुआ था कि जहां शास्त्र से काम न चले वहां अर्थशास्त्र के द्वारा ये जो है ना विधर्मियों से मुकाबला करते थे, इसलिए अखाड़े का गठन हुआ था। नहीं नहीं बहुत बाद में हुआ, उनके बहुत बाद में हुआ है, इसका इतिहास है, मेरे पास लिखा हुआ है, किसी को चाहिए तो बता दूंगा कब कौन अखाड़ा सृजन हुआ, कैसे हुआ, सबका इतिहास है। ये सब सामाजिक पद है, इसमें कोई वैदुष्य का नहीं। हाँ पहले विद्वान हुआ करते थे, अब तो देखा जाए तो एकाध % विद्वान या वो भी नहीं है, महामंडलेश्वर उपाधि हो गई। हाँ जब प्रारंभ में हुआ था तो विद्वान लोग थे। हाँ नहीं बड़ा बवाल हो जाएगा, जाएंगे तो बहुत अलग चले जाते हैं पर बड़ा बवाल होता है। हाँ जैसे पार्टी वाले करते हैं ना वही समझो। हाँ आपने ठीक कहा, पार्टी आजकल पार्टी वाली हो गई, पर कोई इसका महत्व नहीं। किसी समय अखाड़े के बड़ा दबदबा था, अब समाज पढ़ लिख गया ना तो अखाड़े का नहीं के बराबर समाज में महत्व है, कोई वैल्यू नहीं है, पर पहले बड़ा भारी था इनका, बहुत टांग अड़ाते हर काम में। अब इनका केवल कुंभ तक सीमित रह गया, कुंभ तक इनका अभी भी कुंभ में अधिकार, कुंभ में मनमाना कोई नहीं कर सकता, इनकी चलती है कुंभ में, और कोई चाहे संप्रदाय दलबल चाहे ना तो इनके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि इनके यहां लिखित कानून अधिकार है अखाड़ों के पास, तो सरकार को इनको मानना पड़ता है कुंभ में इनकी बात। नहीं वो विद्वान नहीं, वो कथाकार है, उसको कथाकार कहते। मैंने कहा ना विद्वान का विद्वान विदग ज्ञाने धातु से बनता है, तो विद्वान मतलब जो वेद वेदांग पढ़ के पढ़ाने में सक्षम हुआ विद्वान है, और वो तो कोई भी हिंदी 10-20-50 टीका कैसेट सुन लिया वो कथा करने लगा वो कथाकार। हाँ पहले महामंडलेश्वर विद्वान होते थे, अब वो तो केवल अपने ही चारदीवारी तक उनका अधिकार सीमित है, पहले चारदीवारी से बाहर इज्जत था। आप हैं आश्रम में चलो भाई, आश्रम के बाहर कौन पूछता है, कुछ नहीं, पहले था, पहले महामंडलेश्वर शब्द की बड़ा सम्मान बड़ा इज्जत था, बड़ी प्रतीत था, क्योंकि विद्वान तपस्वी होते थे। अब तो विद्वान तपस्वी से लेन देन नहीं, बस दे दो बस हो गया, तख्ती गले में लटक जाएगी कि आप फलाने अखाड़े के महामंडलेश्वर, अब तो ऐसा हो गया ना, तब ऐसा कुछ नहीं, ये अलग है। पारिब्राजक तो ये बोलते हैं कि पारिब्राजक का अर्थ होता परितः ब्रजति इति पारिब्राजत, संन्यास लेकर अपना तीर्थ तीर्थाटन में भ्रमण करता है वो पारिब्राजक है। और परमांश बोलते हैं कि जो ज्ञान में स्थिर हो गया सिद्ध हो गया वो परमांश। परमांश लगाने का मतलब कुछ के ऊपर कायदा कानून लागू नहीं होता, ये पदवी नहीं होता, ये तो आपकी साधना का एक है, पदवी नहीं है, पद तो महामंडलेश्वर है, महंत है, कोठारी पुजारी सब पद है। हाँ आप जब अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो परमांश कहलाने लगे। हंस के समान आपने अनात्मा से आत्मा को अलग कर लिया, इस हंस क्या करता है जल से दूध को अलग कर लिया, ऐसे आपने अनात्मा से आत्मा को अलग करके जान लिया वह परमांश है। तो महामंडलेश्वर पद की पहले गरिमा थी, आज नहीं है। हाँ अपने जो मंडलेश्वर बन गया वो थोड़ा बोलेगा गरिमा नहीं है, वो तो हम बोल रहे हैं, समाज बोल रहा, वो तो आज भी बोलेंगे हाँ बहुत गरिमा है, पर दो चार दीवारी के अंदर तक गरिमा हो सकती है या कुंभ मेले के भंडारे तक गरिमा हो सकती है, उसके बाद कौन पूछता। पहले महामंडलेश्वर मतलब बड़ा भारी विद्वान तपस्वी ज्ञानी वो बनते थे।